नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।